मेरे प्यारे नौजवान साथियों नमस्कार। आज 6 जुलाई 2017 के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सबका बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर में आगे चलकर के हम मुख्य विषय के रूप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वह टॉपिक है भारत इज़राइल संबंध। और इस टॉपिक पर मैं दोनों एंगल से बात करूंगा कि क्या आपके लिए जरूरी है, इसे आप कैसे समझेंगे, और फिर जो भी घटनाएं घटनाक्रम हैं, जो भी बातें हुई हैं, उनकी चर्चा तो हम करंट अफेयर्स के रूप में करेंगे ही। आइए दोस्तों, तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। नो डाउट कि पहली खबर तो भारत इज़राइल संबंधों को लेकर के है ही, उस पर हम लोग मुख्य विषय के तहत बात करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं 2-3 तथ्यों की तरफ आपका ध्यान और दिलाना चाहूंगा फ्रेंड्स। पहला तो ये कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो राज्यों से पारित होना था, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा पारित किया जाना था, आपको मालूम होगा कि जब ये पारित हुआ उस समय भी वित्त मंत्री जी ने कहा था साफ तौर पर कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर के बाकी पूरे देश के राज्यों ने इसे पारित कर दिया है। और एक अच्छी खबर है कि कल जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने भी इसे पारित कर दिया है, यानी कि यह पूरे देश की सहमति जीएसटी के लिए हो गई है। तो यह संघात्मक स्वरूप का एक बड़ा खूबसूरत ऐसा उदाहरण है कि जिसके लिए पूरा राष्ट्र एक है। ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि केवल बड़ी बात ही नहीं है बल्कि बहुत बड़ी घटना भी है। और इस घटना को बड़ी मानने के कारण ही इसका जो कार्यक्रम किया गया था वो सेंट्रल हॉल में किया गया था और अर्ध रात्रि को किया गया था। सेंट्रल हॉल में तो चलिए दूसरे कार्यक्रम भी हो जाते हैं लेकिन अर्ध रात्रि को किया गया था। मित्रों, न्यूज में आपने इसके साथ ही एक बात सुनी होगी, अनुच्छेद 370 ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। न केवल कॉन्स्टिट्यूशन का ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बल्कि आपके सिविल सर्विस के प्रिपरेशन का भी है। काफी पहले जब मैं दार्जिलिंग की अभी जो स्थितियां चल रही हैं उस संदर्भ में भी बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि जो अनुच्छेद 370 है इसके बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बहुत से राजनीतिक दल इस अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की बात करते हैं, कुछ लोग इसे बने रहने देने की बात करते हैं। तो सिविल सर्विस का चूंकि ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है तो आपको इस पर तैयारी कर लेनी चाहिए, मैं आपको पुनर्स्मरण करा रहा हूं। इसके बाद मित्रों, न्यूज में ही पंकज आडवाणी का नाम आपने सुना, इतना ही जानना सफिशियंट है कि वो भारत के बहुत ही अच्छे स्नूकर खिलाड़ी हैं, मतलब वर्ल्ड लेवल के प्लेयर हैं, तो आपको उनका जो खेल का नाम है स्नूकर वो मालूम होना चाहिए। मित्रों, न्यूज में तो इतनी ही बात थी लेकिन अगर आपने डीडी न्यूज देखी हो और आज के अखबारों को ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और इत्तफाक ऐसा है कि इस खबर के ही रूप में मैंने कल थोड़ी सी चर्चा की थी जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित है। आपको ध्यान होगा कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त की मैं बात कर रहा था तब मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनकी नियुक्ति सीधे सीधे राष्ट्रपति करते हैं, जबकि दूसरे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनके प्रमुखों की नियुक्ति एक ग्रुप के द्वारा की जाती है, एक समूह के द्वारा की जाती है, जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री हो सकते हैं, गृहमंत्री हो सकते हैं, फिर दूसरी ओर विपक्ष के नेता होते हैं और दूसरे लीडर्स या कह लीजिए समाज के या विशेषज्ञ होते हैं। तो इस तरह से एक ग्रुप बनाया जाता है ताकि जिस व्यक्ति की नियुक्ति हो रही है उसकी तटस्थता पर विश्वास किया जा सके, उसकी योग्यता पर भरोसा हो कि नहीं ये सरकार के द्वारा ही नियुक्त चुकी नहीं है इसलिए सरकार का पिछलग्गू होकर के काम नहीं करेगा। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसी बात को कल कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि भाई जब मुख्य चुनाव आयुक्त की आप नियुक्ति करते हैं तो उस नियुक्ति के नियम क्या हैं, उसकी प्रक्रियाएं क्या हैं। नो डाउट कि हमारे बकायदे दिया हुआ है कि जो आयुक्त बनाए जाएंगे चुनाव आयुक्त उनकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत बातें उसमें दी हुई हैं, लेकिन उस योग्यता के तो बहुत से लोग हैं तो सरकार किसे चुनाव आयुक्त बनाए ये सरकार के सामने एक बात आती है। तो बट नेचुरली कि सामान्य तौर पर यह समझा जाता है कि सरकार अपने पिछलग्गू को बना देगी जो उनके आदेशों का पालन करे और इससे जो चुनाव आयुक्त है उसकी तटस्थता भंग हो जाएगी, लेकिन आप देखिए कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी कहा है कि बावजूद इसके कि कोई नियम प्रक्रिया उस तरीके से नहीं है, अभी तक जितने भी चुनाव आयुक्त की नियुक्तियां हुई हैं वो सब बहुत सही हुई हैं और उन्होंने अपने काम का, अपने कर्तव्यों का पालन पूरी तटस्थता के साथ किया है। मुझे लगता है दोस्तों कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ये इश्यू है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार इस पर विचार करे, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं तो मुझे लगता है कि ये सिविल सर्विस मेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आपकी तैयारी होनी चाहिए। देखते हैं कि अखबारों में इस पर क्या आता है। तो मित्रों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय की चर्चा करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि न्यूज में आपने सुना होगा कि चर्चा का विषय के तहत भी भारत इजराइल संबंधों पर ही चर्चा होनी है आकाशवाणी पर, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इसे जरूर सुने, क्योंकि ये इसमें एक्सपर्ट लोग होते हैं और बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो आपको अलग अलग एंगल पता लगेगा। देखिए, भारत इजराइल संबंध एग्जामिनेशन की दृष्टि से मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट है, दो तीन पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पहली बात तो यही है कि ये इसे कहा जा रहा है कि भारत की जो विदेश नीति है उसमें एक जबरदस्त परिवर्तन है, यानी यू टर्न है। अभी हम देखेंगे कि वो यू टर्न क्यों है। दूसरा ये देखा जा रहा है कि ये भारत के अपने क्षेत्र में, जो जिसे हम हिंद महासागरीय क्षेत्र कह लें, कुछ सीमा तक प्रशांत महासागरीय क्षेत्र भी कह लें, या एशिया, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भारत के अपने लिए तो है ही, तो ये सारी बातें कही जा रही हैं। और इसराइल ठीक भारत के उतने निकट तो नहीं है, लेकिन एशिया महाद्वीप का हिस्सा तो है। अगर आप इसके बॉर्डर को जाकर के देखेंगे तो ये जो अभी सबसे बड़ी समस्या, जो सबसे बड़े समस्याग्रस्त राष्ट्र हैं, कहीं न कहीं उन्हीं से सटा हुआ है। इसके पड़ोसी देश कौन कौन है? लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, मिस्र है, तो ये नाम आप सुनते हैं, सीरिया का तो आप सुन ही रहे हैं। तो सोच करके देखिए कि एक ऐसा देश है जिसके उत्तरी पूर्वी भाग में सीरिया की सीमा लगती है, तो वैसे भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो उस लिहाज से भी हमारा कहीं ना कहीं, चलिए सीधे पड़ोसी देश तो नहीं है, लेकिन पड़ोसी का पड़ोसी देश तो कम से कम है, पड़ोसी का पड़ोसी का पड़ोसी देश, तो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो मित्रों, इस लिहाज से भी आपको चाहिए कि आप उस डिस्कशन को सुने। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस पर बात शुरू करूं, मैं आपको आज तीन शब्द बताना चाहूंगा कि तीन शब्दों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि जब मैं चर्चा करूंगा तो ये शब्द मिस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही प्रोमिनेंटली ये न्यूज में आए हैं। और जब आप प्रिपरेशन करें तो जो इस तरह की खबरें होती हैं उन पर आपको विशेष रूप से फोकस करना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल्स में आप इनको पढ़ेंगे, आएंगे वहां, लेकिन जब अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो वो आपके दिमाग में नहीं रहेंगे, फिर अगर प्री में पूछ लिया गया तो आप भटक जाएंगे, भ्रम में पड़ जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ सुना तो है लेकिन ये क्या है। एक शब्द है मित्रों मोसाद, मोसाद शब्द आपने सुना होगा, जो वहां की इसराइल की बहुत जबरदस्त विश्व प्रसिद्ध आप कह लीजिए कि इंटेलिजेंस एजेंसी है, गुप्तचर एजेंसी है कह लीजिए, अद्भुत गुप्तचर एजेंसी है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है और उनके समझ में नहीं आता है कि ये एजेंसी काम कैसे करती है, मोसाद। आप कल्पना करके देखिए फ्रेंड्स कि ये जो पूरा इसराइल जो देश है वो चारों तरफ अरब राष्ट्रों से घिरा हुआ है, और ये वो देश है जो इसराइल के जबरदस्त विरोधी हैं, उन विरोधियों के बीच में ये बसा हुआ छोटा सा देश है और सुरक्षित है, सर्वाधिक सुरक्षित राष्ट्रों में से एक राष्ट्र इसराइल माना जाता है। तो कैसे है, तो कहीं ना कहीं मोसाद की भी बहुत बड़ी भूमिका है। मित्रों, इसके बाद एक शब्द और आपने कल के चैनल्स पर देखा होगा, वो है मोशे, ये अखबार आपके रेडियो न्यूज में नहीं है, मोशे। मोशे बेसिकली एक लड़का है फ्रेंड्स, एक लड़का है जो 10-11 साल का है, जो पहले भारत में ही रह रहा था मुंबई में, और मुंबई में 2008 में जो हमले हुए थे उस हमले में इस मोशे के माता पिता मार डाले गए थे, और उसकी जो आया थी उसने किसी तरह से इस बच्चे को बचाया था, और बाद में फिर इसराइल सरकार ने इनको अपने यहां बुला लिया और अपनी नागरिकता दे दी। हालांकि नागरिकता देना आसान नहीं था, क्योंकि इनकी जो आया थी वो क्रिश्चियन थी, और इसराइल के नियम के हिसाब से वो केवल यहूदियों को नागरिकता दे सकते हैं, जो विदेश में बसे हुए यहूदी हैं। लेकिन नियम बदल करके उन्होंने इस बच्चे का ध्यान रखते हुए, कल्पना करके देखिए, उन्होंने उस क्रिश्चियन को भी नागरिकता दी जिसने इस बच्चे को बचाया था, उससे हमारे प्रधानमंत्री मिले हैं। तो आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम के प्रतीक के रूप में मोशे है, एक करुणाजनक प्रतीक के रूप में मोशे है। ये नाम आपको याद रहना चाहिए। और मित्रों फिर एक नाम है हैफा, हैफा, इसकी भी खबर दूरदर्शन चैनल पर है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी तब तक यात्रा करने वाले थे हैफा नामक जगह की, तो वो यात्रा करने के बाद हो सकता है कि रेडियो न्यूज में बाद में आए, खैर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हैफा एक जगह है मित्रों जहां स्मारक है, खासकर हमारे जो भारतीय जो हमारे सैनिक रहे हैं जो 1918 में इसराइल गए थे, और उस समय उस क्षेत्र को हैफा को जर्मन और टर्की की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था, तो हमारे सैनिक गए और वहां उनका बलिदान शहीद हो गए हैफा। तो वहां हमारे प्रधानमंत्री जी जो कि भारतीय सैनिक थे तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए गए हैं, तो हैफा भी आपको मालूम होना चाहिए। ये कुछ सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा मायने रखते हैं ये नाम दोस्तों। तो अब मैं आता हूं आपके प्रिपरेशन के स्ट्रक्चर पर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर। देखिए जब भी आपको लगता है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन की दृष्टि से, तो सबसे पहले तो आपको उस देश के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, इससे आपकी जो एनालिटिकल कैपेसिटी है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जब हम इसराइल के बारे में इस तरह से सोचते हैं तो हमें थोड़ी सी जानकारी हो जानी चाहिए, जैसे इसराइल की जो पॉपुलेशन है वो केवल 88 लाख, 88 लाख, सोच करके देखिए केवल 88 लाख पॉपुलेशन, और आज पूरी दुनिया इसराइल की तरफ देखती है बहुत से मामलों में। इनोवेशन के मामले में हम इसराइल की तरफ देखते हैं, अंतरिक्ष मामलों में, सुरक्षा मामलों में, आतंकवाद विरोधी मामलों में, कृषि के मामले में, मतलब ये पूरा का पूरा जो इसराइल है रेगिस्तानी इलाका था, ज्यादातर पानी नहीं है, और आज उस इसराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी से वो पानी केवल अपने देश को ही नहीं दे रहा है बल्कि एक्सपोर्ट कर रहा है। सोचिए वो दूसरे देशों को भी पानी दे रहा है, और उसने कैसे टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है कि वो हवा से पानी तैयार करता है और जहां शुद्ध पानी की कमी है वहां वो पानी भेजता है। सोचिए ये टेक्नोलॉजी है, रेगिस्तान एरिया है और खेती में आज दुनिया के श्रेष्ठतम देशों में से एक है इसराइल की, उसने खेती की टपक सिंचाई प्रणाली कर ली है, जिसको टपक मतलब जिसको हम कहेंगे ड्रॉप इरिगेशन, बूंद बूंद करके पानी टपकता है और उसमें इरिगेशन हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी नारा दिया था ना, एक बूंद एक एक बूंद पानी का खेती के लिए। ये इसराइल है, छोटा सा देश, इनोवेशन के मामले में अद्भुत। मित्रों आबादी है कुल 88 लाख और जो एरिया है केवल 22,000 स्क्वायर किलोमीटर। आप भारत से तुलना कर लीजिए, उसकी आबादी है 88 लाख, हमारी आबादी है 130 करोड़, सोच करके देखिए, और उसका एरिया है 22,000 किलोमीटर और हमारा एरिया है 33 लाख वर्ग किलोमीटर। ये इसराइल है राइट मित्रों। जो यहां की राजधानी है वो राजधानी आपके जो है वो जरिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी गए तो आपके वहां तेल अवीव है, वो जो वहां का एक तरह से आर्थिक और टेक्नोलॉजी का सेंटर है, लेकिन इसकी जो कैपिटल है वो बेसिकली जेरूसलम है राजधानी। मित्रों यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें 75% 74.8 समथिंग परसेंट, तो याद करने के लिए 3/4 जो भाग है वो यहूदियों की है, और जो मुस्लिम है सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम की है जो 17.6% है, ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। 75% यहूदी या बेसिकली यहूदियों का ही देश है। और जो यहूदी है फ्रेंड्स दुनिया में जो इंटरप्रेन्योरशिप होती है जो टेक्नोलॉजी होती है इस मामले में अद्भुत हैं यहूदी। जो हमारे आइंस्टीन हैं वो यहूदी रहे हैं, कार्ल मार्क्स यहूदी रहे, ये सब नाम तो आप जानते हैं, फ्रायड यहूदी रहे हैं, ये सब यहूदी रहे हैं, सोच करके देखिए कि इतने महान नाम हैं। और यही वे यहूदी हैं जिनसे हिटलर घृणा करता था और कितने ज्यादा नरसंहार हिटलर ने इन्हीं यहूदियों के कराए, वो चिढ़ता था यहूदियों से। तो मित्रों इसके बावजूद सोच करके देखे कि इसराइल की यह स्थिति है, तो हिटलर तो चलिए अपने किन कारणों से चिढ़ता था मित्रों वो अलग है, उनको हम यहां नहीं लेते हैं, लेकिन एक दूसरा रीजन है जिसकी वजह से मुस्लिम इनसे मुस्लिम पसंद नहीं करते इसराइल को, और वह कुल कारण यह है फ्रेंड्स कि जो मोहम्मद साहब है, मोहम्मद साहब ने जब अपने आप जब खुद को पैगंबर घोषित किया, मोहम्मद साहब का जो काल है देखिए वो थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए, पीरियड मिलने से आपकी समीक्षा बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि तब आप उस समय के अनुकूल उन चीजों को देख सकते हैं। मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो 570 में हुआ था और जो उनका इंतकाल हुआ वो 632 में हुआ, यानी कि उन्हें बहुत छोटी उम्र मिली, केवल 62 ईयर्स। तो ये इसराइल के लोगों ने उन्हें पैगंबर मानने से इनकार कर दिया। ये मुख्य वह कारण है जिसकी वजह से मुस्लिम जो हैं इसराइल को पसंद नहीं करते, यहूदियों को पसंद नहीं करते, जो भी आप कह लीजिए। तो अब देखिए कि जो मुस्लिम यानी कि मुस्लिम राष्ट्र जितने भी अरब राष्ट्र हैं वो इसराइल के विरोधी हैं। अब हम भारत के संबंधों पर आते हैं थोड़ा सा, वो उसके विरोधी हैं, वो इसराइल को पसंद नहीं कर सकते करते। भारत के साथ शुरू में संकट ये था मित्रों कि इसराइल के विरोध में फिलिस्तीनी कुछ क्षेत्रों को मिला करके अपने अलग राज्य की मांग कर रहा है, जिसके यासिर अराफात बड़े प्रसिद्ध लीडर रहे हैं, और भारत फिलिस्तीनी को भी अपना समर्थन दे रहा था कि नहीं हम राष्ट्र की स्वतंत्रता के समर्थक हैं तो उन्हें भी स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहिए, और हम वैसे भी गुटनिरपेक्ष देशों के लीडर थे। तो भारत ने हालांकि ठीक है कि 1950 में इसराइल को मान्यता दे दी, लेकिन कूटनीतिक संबंध नहीं बनाए। ये तो कूटनीतिक संबंध हमारे बने 1992 में जब नरसिंहा राव जी प्रधानमंत्री थे। तो इसका मतलब है कि 1992 से पहले हम एक तरीके से बैक चैनल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम फ्रंट चैनल डिप्लोमेसी पे आए हैं। जो नरेंद्र मोदी जी के समय में वो और ज्यादा आगे बढ़ गया क्योंकि प्रधानमंत्री की यात्रा हुई है, राइट। हम क्यों नहीं इसराइल को समर्थन दे पा रहे थे, सीधे सीधे क्यों हम हिचक रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री वहां नहीं गए? उसका रीजन मित्रों, एक तो यह है कि हम अरब देशों के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाह रहे थे। ये भय था कि अगर हमने इसराइल का समर्थन किया या उससे दोस्ती बढ़ाई, समर्थन तो हमने चलिए कर दिया था, दोस्ती बढ़ाई तो हो सकता है वो नाराज हो जाएं, और तेल वगैरह के जो मामले थे, तेल का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो अरब देश था, तो हम उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे। लेकिन केवल अरब देशों की नाराजगी का सवाल नहीं था, हमारे अपने देश के मुसलमानों की भी नाराजगी का सवाल था, क्योंकि हमारे देश में 12-14% उस समय से लेकर अभी तक की मैं बात कर रहा हूं कि जो आबादी है वो मुस्लिम है। तो ये भी भय रहता था सरकार को कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत के मुस्लिम भी इससे नाराज हो जाएं। तो ये हुआ कि ठीक है, एक इस तरह की डिप्लोमेसी की जाए कि हम फिलिस्तीनी को भी समर्थन देते हैं, हम इसराइल के साथ भी संबंध बनाना चाहते हैं, और इसराइल ने भारत का सपोर्ट किया है, चाहे वो चाइना वार हो, 1971 का वार हो, कारगिल युद्ध हो, डिफेंस के मामले में उसने हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की हैं। तो मित्रों ये थोड़ी सी बैकग्राउंड थी, और अभी प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद जो समझौते हुए हैं वो अखबार में आपके सामने हैं। मुख्य जो समझौते हुए हैं वो आपको मालूम हो जाने चाहिए कि जल के क्षेत्र में हुआ है, कृषि के क्षेत्र में हुआ है, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हुआ है, नवोन्मेष इनोवेशन के क्षेत्र में हुआ है। ये 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, थोड़ी सी आप इनकी जानकारी रख लीजिए। पृष्ठभूमि जो इसकी बैकग्राउंड है वो मैंने आपको बता दी है, और अगर इतनी आपकी तैयारी हो गई तो इसराइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन भारत इसराइल संबंधों से जब पूछा जाएगा तो डेफिनेटली आप उसके उत्तर देने की स्थिति में होंगे। मित्रों अंत आखिरी में एक बात और, इसराइल को आप नक्शे पर जरूर देखें और ध्यान से देखें, और उसके आसपास के देशों को भी आइडेंटिफाई करें। इस बार जो प्री एग्जाम हुआ है उसमें आपने देखा है कि पूछा गया है कि भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। इसका उत्तर देना आसान नहीं है, ये तभी दे पाएंगे जब नक्शे की बहुत अच्छी जानकारी आपको हो। तो आप इराक को आइडेंटिफाई कीजिए, सॉरी इसराइल को आइडेंटिफाई कीजिए कि वो कहां पर स्थित है, और किसी छोटे नक्शे में नहीं, बड़े नक्शे में, तब आप सही रूप में इसराइल की लोकेशन को समझ पाएंगे, और ऐसा आपको करना चाहिए। तो मित्रों आज अब वक्त नहीं है कि मैं फैक्ट्स ऑफ द डे बताऊं, उसकी चलिए हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अब मैं कुछ प्रेस क्लिपिंग्स प्रोवाइड करने के बाद आता हूं अपने अंतिम चरण पर, और वह अंतिम चरण है नौजवान साथियों का स्वागत करने का। तो मित्रों मैं अपने एक नौजवान साथी का स्वागत करता हूं जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इनका नाम है प्रशांत कुमार, आप रांची झारखंड से हैं। तो दोस्तों, अब इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब मैं यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।